जरा सोचिए, मतलब इतिहास के सबसे कुशाग्र और ज्ञानी व्यक्ति की कल्पना कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया भर के बिखरे हुए डेटा को इकट्ठा किया हो, उसे प्रोसेस किया हो और
और पूरी मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा अल्टीमेट कोड या मैनुअल लिख दिया हो जिसमें जीवन जीने के सारे नियम मौजूद हो।
बिल्कुल, धर्म, अर्थ, काम, हर चीज का लॉजिक एकदम सुलझा दिया हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति ये सब कुछ हासिल करने के बाद एक कोने में अकेला बैठा है, पूरी तरह से निराश, खाली और एक अजीब सी मानसिक अस्थिरता से घिरा हुआ।
ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास की स्थिति थी जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का आधार यही विरोधाभास है। हमारे सामने जो स्रोत है, भागवत कथा का रहस्य, ज्ञान से भक्ति तक की यात्रा, वो इसी सवाल को उठाता है कि क्या केवल शुष्क बौद्धिक ज्ञान, मतलब सिर्फ असीमित डेटा इकट्ठा कर लेने से इंसान को सच्ची शांति मिल सकती है?
ये बहुत ही सटीक सवाल है। और देखिए, महर्षि व्यास का ये आंतरिक संकट सिर्फ एक प्राचीन घटना नहीं है, ये आज के युग का सबसे सटीक आईना है। वेद व्यास जी के पास 18,000 श्लोकों और 12 स्कंधों का एक विशाल ब्रह्मांडीय डेटाबेस था।
हाँ, हर चीज का डेटा।
उनके पास हर सवाल का तार्किक जवाब था। फिर भी उनके भीतर जो एक गहरी आध्यात्मिक अतृप्ति थी, वो ये दर्शाती है कि ज्ञान का एक बिंदु ऐसा आता है जहां तर्क और डेटा काम करना बंद कर देते हैं। इस स्रोत का विश्लेषण करते हुए हमें ये समझना है कि वो कौन सा मिसिंग लिंक था जिसने इतने बड़े ज्ञानी को भी अशांत कर रखा था।
यहीं से मेरे दिमाग में आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम आज के युग को देखें तो हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, हर सेकंड अपडेट होने वाला सोशल मीडिया है, और अब तो मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI भी है।
बिल्कुल, डेटा की तो कोई कमी ही नहीं है।
वही तो, मानव इतिहास में इससे पहले कभी भी सूचनाओं का इतना बड़ा अंबार नहीं था। फिर भी एक अजीब सा खालीपन हर तरफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे बाहर से इंसान जितना ज्यादा कनेक्टेड है, अंदर से वो उतना ही अकेला और डरा हुआ है। वेदव्यास जी की स्थिति की तुलना तो आज के किसी शीर्ष डेटा साइंटिस्ट या टेक एग्जीक्यूटिव से की जा सकती है।
हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है।
मतलब जिसके पास दुनिया भर का डेटा है, जो सबसे जटिल एल्गोरिदम लिख रहा है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आ रही। क्या ये स्रोत ये साबित करता है कि केवल इन्फॉर्मेशन का होना हमें आंतरिक अर्थ नहीं दे सकता?
देखिए, ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से सामने रखती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि केवल डेटा या धर्म के शुष्क नियमों का पालन करने से आत्मा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बौद्धिक डेटा हमें बाहरी रूप से समृद्ध बनाता है। एक टेक वर्कर को ये डेटा एक बड़ा पद, भारी वेतन और समाज में सम्मान तो दिला सकता है, लेकिन ये आंतरिक शांति के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि केवल तर्क या लॉजिक इंसान की भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। आज के कॉर्पोरेट जगत या टेक इंडस्ट्री का पूरा ढांचा ही इस बात पर टिका है कि अगर कोई समस्या है तो और ज्यादा डेटा इकट्ठा करो।
सही बात है,
ज्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब है बेहतर समाधान। तो क्या ये स्रोत ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन जमा करना ही गलत है?
नहीं, इन्फॉर्मेशन जमा करना गलत नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को ही अंतिम सत्य मान लेना गलत है। इसे आधुनिक अटेंशन इकोनॉमी के संदर्भ में देखना चाहिए। आज डिजिटल विकर्षण लगातार मानवीय ऊर्जा को सोख रहे हैं। लोग दिन भर स्क्रीन स्क्रोल करते हुए ज्ञान और तथ्य तो बटोर रहे हैं।
हाँ, दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं।
बिल्कुल, लेकिन उस ज्ञान को अनुभव में बदलने का समय किसी के पास नहीं है। वेद व्यास जी की अशांति भी इसी बात का संकेत थी कि उनके पास ब्रह्मांड का सारा मैनुअल तो था, लेकिन उस मैनुअल के भीतर जो आनंद या रस होना चाहिए वह नदारद था।
तो अगर किसी का दिमाग इन्फॉर्मेशन के इस ओवरलोड से क्रैश हो रहा हो, तो इस सिस्टम को रीबूट कैसे किया जाए?
स्रोत के अनुसार, इस पूरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की शुरुआत एक बहुत ही खास जगह से होती है, नैमिषारण्य।
हाँ, नैमिषारण्य का वन इस पूरी कथा का प्रस्थान बिंदु है। यहीं पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कुछ बेहद गहरे प्रश्न पूछे थे।
88,000 ऋषि, मतलब ये कोई छोटा सेमिनार नहीं था?
बिल्कुल नहीं, उन्होंने पूछा था कि कलयुग के विकर्षणों और मानसिक अस्थिरता से बचने का सबसे सरल मार्ग क्या है, और मानवता के लिए अंतिम कल्याणकारी धर्म क्या है। यह समझना जरूरी है कि ये प्रश्न केवल कुछ ऋषियों की निजी जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक शोध की तरह थे। स्रोत में नैमिषारण्य शब्द का जो अर्थ बताया गया है वो मुझे एक भौगोलिक स्थान से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति लगा। क्या नैमिषारण्य सिर्फ एक जंगल का नाम है?
नहीं, प्रतीकात्मक अर्थ में नैमिष चेतना के उस स्तर को कहते हैं जहां निमिष यानी समय का चक्र या मन की चंचलता शांत हो जाती है। ये वह अवस्था है जहां दिमाग का लगातार चलने वाला बैकग्राउंड शोर बंद होता है।
अच्छा।
स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक मन की ये चंचलता और बाहरी विकर्षण शांत नहीं होते तब तक इंसान के भीतर सच्ची आध्यात्मिक जिज्ञासा या स्पिरिचुअल इंक्वायरी का जन्म हो ही नहीं सकता। शोरगुल वाले दिमाग में गहरे सवाल पैदा ही नहीं होते।
इससे अगर आधुनिक जीवन से जोड़ा जाए तो ये कुछ वैसा ही है जैसे स्मार्टफोन को एयरप्लेन मोड पर डालना।
एग्जैक्टली, बहुत सही कहा।
या जिसे आज की भाषा में डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति वाईफाई और नेटवर्क को बंद नहीं करता तब तक नोटिफिकेशन आना बंद नहीं होते, और जब तक वो बाहरी शोर बंद नहीं होगा फोकस करना असंभव है।
बिल्कुल।
एक व्यस्त तनावग्रस्त इंसान, विशेषकर जो हाई स्ट्रेस टेक करियर में है, जब तक बाहरी शोर को शांत करने के लिए अपना खुद का नैमिषारण्य नहीं खोजता तब तक वो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश शुरू ही नहीं कर सकता।
ये एयरप्लेन मोड की धारणा बिल्कुल उसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाती है। बिना बाहरी शोर काटे इंसान एक रोबोट की तरह ऑटो पायलट पर प्रतिक्रिया देता रहता है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब मन शांत हो गया, जब दिमाग एयरप्लेन मोड पर चला गया, तब आगे क्या?
हाँ, क्योंकि सिर्फ चुप बैठने से तो हल नहीं निकलेगा ना।
बिल्कुल। समस्या का समाधान सिर्फ चुप बैठने से तो नहीं मिलेगा। यहीं पर वेदव्यास जी के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, देवर्षि नारद का प्रवेश।
तो क्या नारद जी आकर व्यास जी को ये बताते हैं कि उनका सारा संकलित डेटाबेस और वेदों का ज्ञान बेकार है? क्या वे उन्हें अपना सारा पुराना काम डिलीट करके नए सिरे से शुरुआत करने को कहते हैं?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारद जी ये नहीं कहते कि ज्ञान व्यर्थ है। उनका संदेश यह है कि केवल शुष्क ज्ञान पर्याप्त नहीं है। नारद जी व्यास जी को उनके असंतोष का मूल कारण बताते हैं।
तो मूल कारण था क्या?
वे कहते हैं कि व्यास जी ने वेदों और शास्त्रों में नियम कानून कर्मकांड और लॉजिक तो बहुत लिख दिए, लेकिन उन्होंने भगवान के यश प्रेम और उनकी लीलाओं का उस गहराई से वर्णन नहीं किया है जो सीधे लोगों के हृदय को छू सके और उनमें भक्ति जगा सके।
इसी बात को समझाने के लिए शायद नारद जी अपनी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाते हैं।
हाँ, नारद जी बताते हैं कि कैसे वे पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उनके पास न तो कोई बड़ा पद था, न ही वेदों का भारी भरकम बौद्धिक ज्ञान, लेकिन केवल सत्संग, संतों की सेवा और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम के कारण वे दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गए।
अरे वाह।
नारद जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो परिवर्तन बड़े बड़े बौद्धिक ग्रंथों से नहीं आ सका वो एक सरल और निस्वार्थ प्रेम से आ गया।
और यहाँ श्रोत में एक बहुत ही भारी और तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अहेतुकी भक्ति।
जी, अहेतुकी भक्ति इस पूरे दर्शन का केंद्र है। हेतु का अर्थ होता है कारण या स्वार्थ। इसलिए अहेतुकी भक्ति का मतलब है ऐसी भक्ति या ऐसा प्रेम जिसका कोई सांसारिक कारण या कोई छिपा हुआ एजेंडा न हो,
बिना किसी कारण के।
हाँ, आमतौर पर दुनिया में जो भी संबंध या प्रार्थनाएं होती हैं वे किसी न किसी कारण पर टिकी होती हैं। मुझे सफलता मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये एक तरह का लेन देन या ट्रांजैक्शन है। लेकिन नारद जी जिस अहेतुकी भक्ति की बात कर रहे हैं वो बिना किसी शर्त के केवल प्रेम के लिए प्रेम करना है।
मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि ये बात तार्किक रूप से कुछ हजम नहीं हो रही।
अच्छा,
मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति हाई स्ट्रेस टेक जॉब में है, उसका पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ समस्याओं को सुलझाने, सिस्टम क्रैश को रोकने और लॉजिक का इस्तेमाल करने में बीतता है। उसका पूरा करियर इसी कॉज एंड इफेक्ट पे टिका है।
बिल्कुल।
अब तैसे इंसान से अगर कहा जाए कि बिना कारण वाली भक्ति करो या शरणागति कर दो, मतलब सरेंडर कर दो, तो क्या ये उसके लिए अपना करियर बर्बाद करने जैसा नहीं होगा? क्या एक कॉर्पोरेट माइंडसेट वाले व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि सरेंडर करने का मतलब है हार मान लेना, अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देना या काम से भाग जाना?
देखिए, पहली नज़र में देखने पर यह सचमुच हार मान लेने जैसा ही लगता है, क्योंकि आधुनिक समाज ने समर्पण या शरणागति शब्द को कमजोरी के साथ जोड़ दिया है। लेकिन मनोविज्ञान और अध्यात्म के नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है।
तो इसका असली मतलब क्या है?
शरणागति का अर्थ जीवन के संघर्षों से भागना या अपने काम को छोड़ देना नहीं है। वास्तव में यह समझने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है कि जीवन की सभी जटिलताओं का समाधान केवल इंसान के सीमित बौद्धिक तर्क या लॉजिक में नहीं है। एक टेक वर्कर जब सरेंडर करता है तो वो अपना काम करना बंद नहीं करता, वो अपने बौद्धिक अहंकार को छोड़ देता है। हाथ में है तो विफलता का सारा डर और बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। शरणागति चेतना को इस बोझ से मुक्त करने का एक साधन है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
जब कोई ये मान लेता है कि उसके नियंत्रण से परे भी एक व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था काम कर रही है, तो दिमाग के कई विकार, व्यर्थ की चिंताएं और बर्नआउट की स्थिति अपने आप खत्म हो जाती है। इंसान का काम करने का तरीका वही रहता है, बल्कि उसका फोकस और बढ़ जाता है, क्योंकि काम के पीछे का वो डर खत्म हो जाता है।
इसका मतलब है कि ज्ञान से भक्ति तक की इस यात्रा को केवल जंगलों में बैठे ऋषियों के लिए नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न भागदौड़ भरे जीवन में भी बहुत व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक विज्ञान है। श्रोत में भागवत के उपदेशों के आधार पर कुछ बहुत ही सटीक दृष्टिकोण दिए गए हैं, जिन्हें कोई भी अपनी कॉर्पोरेट दिनचर्या में अपना सकता है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि संसार से भागना नहीं है।
हाँ, अध्यात्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि शांति पाने के लिए नौकरी या समाज छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो हिमालय जाना पड़ेगा।
वही तो, लेकिन ये श्रोत सिखाता है कि संसार के बीच रहते हुए चेतना को कैसे जागृत किया जाए। किसी को भी अपनी जॉब या अपने प्रोजेक्ट्स छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने रोजमर्रा के काम के बीच साक्षी भाव लाया जाए।
साक्षी भाव मतलब एक तरह का ऑब्जर्वर स्टेटस।
हाँ, साक्षी भाव का मतलब है कि इंसान काम तो पूरी तन्मयता से कर रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो उस काम के तनाव से थोड़ा पीछे हटकर खुद को और परिस्थिति को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है। वो सफलता या विफलता से खुद को इतना नहीं जोड़ता कि वो टूट जाए।
एक ऑब्जर्वर की तरह देखना, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक व्यक्ति के लिए ये करना तब बहुत मुश्किल होता है जब उसके सामने कोई भारी संकट खड़ा हो। मान लीजिए ऑफिस में कोई बहुत बड़ा सर्वर डाउन हो गया है और सब तरफ अफरा तफरी मची है।
हाँ, पैनिक का माहौल है।
ऐसे में साक्षी भाव कैसे लाया जाए? यहीं पर श्रोत में एक और बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट बताया गया है, विराट रूप का दर्शन। क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है?
विराट रूप का कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही प्रभावी है। भागवत के द्वितीय स्कंध में वर्णित विराट रूप सिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही एक विशाल स्वरूप है। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो ये हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। विज्ञान में इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है।
ओवरव्यू इफेक्ट जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को होता है ना?
बिल्कुल वही। जैसी अनुभूति अंतरिक्ष यात्रियों को होती है जब वे दूर से पृथ्वी को एक छोटे से बिंदु के रूप में देखते हैं।
यह एक बहुत ही कमाल का मानसिक टूल है। जब कोई कर्मचारी ऑफिस में बैठा हो, सर्वर क्रैश हो गया हो, क्लाइंट नाराज हो और ऐसा लग रहा हो जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तब अगर वो एक पल के लिए इस विराट रूप के कॉन्सेप्ट को याद करे, अगर वो सोचे कि इस अनंत ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाओं के बीच मिल्की वे के एक छोटे से ग्रह पर बैठकर वो एक कोडिंग एरर या एक डेडलाइन को लेकर परेशान हो रहा है, तो अचानक से वो सारा तनाव बहुत ही हास्यास्पद और छोटा लगने लगता है।
और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो तनाव छोटा लगता है, दिमाग का जो हिस्सा डर को प्रोसेस करता है वो शांत हो जाता है। इसके बाद इंसान की तार्किक क्षमता कई बेहतर तरीके से काम करने लगती है और वो उस समस्या को ज्यादा आसानी से सुलझा पाता है।
क्या बात है,
ये चेतना का विस्तार है। जब चेतना का विस्तार होता है तो दैनिक जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हावी नहीं हो पाती
जी।
इसके साथ ही श्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है जो आधुनिक जीवन की एक बड़ी बीमारी का इलाज है, और वो है समय का मूल्य। इसके लिए राजा परीक्षित की 7 दिन की कथा का संदर्भ आता है।
राजा परीक्षित की कहानी, जहां तक मुझे पता है उन्हें ये शाप मिला था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अगर आज के नजरिए से देखें तो ये एक अल्टीमेट डेडलाइन थी, सिर्फ 7 दिन।
जरा कल्पना कीजिए कि किसी को पता चले कि उसके पास जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी थे। वे चाहते तो घबरा सकते थे, डॉक्टरों को बुला सकते थे या अपना बचा हुआ समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर सकते थे।
आमतौर पर इंसान पैनिक ही करेगा।
बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने शुकदेव जी के मार्गदर्शन में उन 7 दिनों का पूरा उपयोग आत्मसाक्षात्कार और आंतरिक शांति की खोज में किया। उन्होंने अपने फोकस को पूरी तरह से एक जगह केंद्रित कर दिया।
ये आज के युग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम गहराई से सोचें तो हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम ही है, बस हमें पता नहीं है कि वो खत्म कब होगा।
सही बात है।
एक कॉर्पोरेट कर्मचारी अगर इस बात को समझ ले कि उसका समय सीमित और बहुत कीमती है, तो क्या वो समय को अटेंशन इकोनॉमी के जाल में फंसकर बर्बाद करेगा? क्या वो घंटों तक सोशल मीडिया पर व्यर्थ की बहसें करेगा या अर्थहीन डिजिटल विकर्षणों में अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा?
बिल्कुल नहीं।
जिस तरह परीक्षित ने अपने समय का महत्व समझा, उसी तरह आज का इंसान अपने समय का उपयोग आंतरिक अर्थ और आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकता है।
ज्ञान से भक्ति तक की इस यात्रा का यही सार है। भागवत के प्रथम दिन की कथा, जो प्रश्नों से शुरू होकर सृष्टि के विज्ञान तक जाती है, हमें यही सिखाती है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता केवल सूचनाओं या बौद्धिक ज्ञान के संग्रह में नहीं है। वेद व्यास जी की जो अशांति थी, वो आज के आधुनिक इंसान की अशांति है। और नारद जी का जो संदेश था कि ज्ञान को भक्ति और समर्पण से जोड़ो, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ती है, जब किसी की तार्किक क्षमता के साथ बिना शर्त वाला प्रेम और समर्पण जुड़ता है, तभी जीवन में एक वास्तविक संतुलन आता है।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे आज का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और डेटा का अंबार इंसान को ठीक उसी तरह अतृप्त और खाली छोड़ देता है जैसे महर्षि व्यास को छोड़ दिया था। हमने ये भी समझा कि कैसे नैमिषारण्य के कंसेप्ट का उपयोग करके एक डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक एयरप्लेन मोड के जरिए मन की चंचलता को शांत करना कितना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे देवर्षि नारद का अहैतु की भक्ति और शरणागति का संदेश जीवन से हार मानना या भागना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि यह आज के भारी मानसिक तनाव, बर्नआउट और अटेंशन इकोनॉमी का सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समाधान है। ये काम को छोड़ना नहीं, बल्कि काम करने के पीछे के भाव को पूरी तरह से बदल देना है।
इसे आप एक तरह का चेतना का अपग्रेड कह सकते हैं। ये समझना कि अंतिम उद्देश्य सिर्फ हार्ड ड्राइव में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को विजडम या प्रज्ञा में बदलना है।
और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार उत्तेजक प्रश्न है, जिसे मैं यहां छोड़ना चाहूंगा ताकि हम सब इस पर गहराई से सोच सकें। यह सोचने वाली बात है कि अगर महर्षि वेदव्यास जैसे महान ज्ञानी को भी, जिनके पास उस युग का पूरा विशाल डेटाबेस था, केवल तार्किक ज्ञान से शांति नहीं मिली, तो क्या आज की आधुनिक पीढ़ी अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नए ऐप्स और भी अधिक डेटा में खोजकर वही हजारों साल पुरानी गलती फिर से नहीं दोहरा रही है?
ये तो सच में सोचने वाली बात है।
शायद अगली बार जब भी कोई स्क्रीन पर कुछ सर्च कर रहा हो या किसी नए AI टूल से जवाब मांग रहा हो, तो उसे एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या मेरी ये तलाश केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है या वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए?